परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल हैं और आज प्रतिदिन की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 8 उसके 1 से 12 पद तक का अध्ययन किया था और हम अभी इसे समाप्त नहीं कर पाए थे। हम देख रहे थे कि यीशु मंदिर में शिक्षा दे रहा था कि शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में रंगे हाथ पकड़ी गई एक स्त्री को यीशु के पास लाए। वे यीशु को फंसाना चाहते थे। यदि यीशु कहता कि व्यवस्था के अनुसार उसे पत्थरवाह किया जाए तो वह रोमी व्यवस्था में हत्यारा था, और यदि वह इनकार करता तो वह मूसा के व्यवस्था में अपराधी था। अतः यीशु ने भूमि पर कुछ लिखना आरम्भ किया जिससे पढ़ पढ़ कर वे सब वहां से चले गए। यीशु ने उस स्त्री को क्षमा किया क्योंकि उसके पापों का दंड चुकाने वह वहां पर आया था। तब यीशु ने प्रवचन में कहा कि वह जगत की ज्योति है और ज्योति में रहने वाला अंधकार का नहीं होता। यीशु को पाने वाला जीवन की ज्योति पाता है, इस पर फरीसियों ने उससे कहा, जिसे हम आज के अध्ययन में आगे देखेंगे। लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। पिता परमेश्वर, पिछले दिनों आपने अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत किया, हमें आशीषित किया, और आज भी हम फिर एक बार आपकी निकटता में आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें से हर एक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दे, ताकि जब हम आपके वचन में से सीखते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवित वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए। पिता परमेश्वर, हमारे तकलीफों को, हमारे कष्टों को हमारे जीवन से हटाने पाए। हमारी विनती है उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन से दुखी और निराश हैं, चिंता और परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, आर्थिक तंगी में हैं, अपने वैवाहिक जीवन से परेशान हैं और अपने नौकरी की तलाश में हैं। पिताजी, हमारी विनती है कि आप प्रत्येक की सहायता करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। हर एक चिंताओं को आपकी निकटता में लाते हैं और इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, आप हम सब की सहायता करें, हमारी मदद करें। धन्यवाद पिताजी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके 13 और 14 पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि यदि मैं अपनी गवाही आप देता तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। धर्मगुरु यीशु पर आडंबर का दोष लगाते हैं। यीशु उन्हें अपनी गवाही के 3 कारण बताता है। पहला, मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। अतः वह अपने आप को जानता था। सांसारिक मनुष्य आपको नहीं बता सकता कि वह कहाँ से आया है। वैज्ञानिक लाखों वर्ष पुरानी बातें करते हैं जबकि 100 वर्ष पूर्व वे थे ही नहीं। वे कल्पना करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह निश्चित रूप से जानता था कि वह कहाँ से आया था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 15 और 16 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। यह दूसरा कारण है, उसका न्याय शरीर के अनुसार नहीं है। हमारा न्याय अधूरा है क्योंकि हमारे पास सब तथ्य नहीं है। विकासवाद इसका एक उदाहरण है। मनुष्य या तो कल्पना के आधार पर चलता है या उसे प्रकाशन के आधार पर। यीशु का न्याय स्वर्ग से आता है, वह परमेश्वर के मूल्यांकन को प्रकट करता है, यही प्रकाशन है। और इस कारण धर्मगुरु यीशु के और अधिक विरोधी हो गए। हम यूहन्ना 8 अध्याय उसके 17 और 18 पद में पढ़ते हैं, और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। मित्रों, उसकी गवाही की प्रामाणिकता का तीसरा सबसे बड़ा कारण है, पिता ने उसकी गवाही दी कि वह उसका प्रिय पुत्र है। हम यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय उसके 19 पद में पढ़ते हैं, उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया कि न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को, यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। उनका विचार केवल सांसारिक पिता तक ही सीमित था। यीशु ने सदैव परमेश्वर को अपना पिता कहा है। पुनरुत्थान के बाद उसने मरियम मगदलिनी से कहा था, मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास ऊपर जाता हूँ। मित्रों, हम यीशु में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान हैं, परंतु यीशु त्रिएकत्व में अपने स्थान के कारण पुत्र है, जिसका सांसारिक वंशावली से कोई संबंध नहीं और न ही नए जन्म से संबंध है। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते, यही मुख्य बात है। परमेश्वर पिता को जानने के लिए आवश्यक है कि मसीह यीशु को ग्रहण करें। यूहन्ना 8 अध्याय उसके 20 से 22 पद में हम पढ़ते हैं, ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही और किसी ने उसे न पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे, जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है कि जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते। मेरे प्रियो, भंडार घर महिलाओं के आंगन में था, यही वे व्यभिचारिणी को लेकर यीशु के पास आए थे। आप देख रहे हैं कि यहूदी कैसे अंधकार में थे। पहले उन्होंने यीशु से पूछा कि उसका पिता कहाँ है, अब वे सोच रहे हैं कि वह संभवतः आत्महत्या करेगा। जी नहीं, वह अपने आप को मनुष्यों के पाप के लिए बलि करेगा, जिसे वे समझने में असमर्थ थे। उसने पहले ही कह दिया था कि वह अन्य जातियों द्वारा मारा जाएगा, क्योंकि धर्मगुरु उसे घात करेंगे। हम यूहन्ना 8 अध्याय उसके 23 पद में पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो मैं संसार का नहीं। यीशु के कहने का अर्थ है कि मानवीय ज्ञान के लिए मानवीय बुद्धि की आवश्यकता है, परंतु ईश्वरीय ज्ञान के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है कि मसीह के भेद को प्रकट करे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 14 पद में पौलुस भी इसी बात को कहता है। हम यूहन्ना 8 उसके 24 पद में पढ़ते हैं, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। मेरे प्रियो, मनुष्य की मृत्यु पाप के कारण होती है। यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे, क्या कोई मरण शया पर उद्धार पा सकता है? निश्चय ही हाँ, यदि वह मसीह यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर ले। मनुष्य मसीह का त्याग सदा के लिए भी कर सकता है, जैसा यहूदी धर्मगुरु कर रहे थे। हम यूहन्ना 8 उसके 25 पद में पढ़ते हैं, उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। मेरे प्रियो, वे यीशु के विषय कुछ नहीं जानते थे। पहले तो उन्होंने पूछा कि उसका पिता कौन है, फिर वे उसकी मृत्यु के बारे में उलझन में पड़ गए। अब वे पूछते हैं कि तू कौन है। उसका उत्तर सदा एक ही था कि वह मसीह है। हम यूहन्ना 8 अध्याय उसके 26 पद में पढ़ते हैं, तुम्हारे विषय में मुझे कुछ कहना है और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। यीशु ने सदैव एक ही बात कही कि वह वही करता है जो पिता को करते देखता है और वही कहता है जो पिता उस पर प्रकट करता है। यह प्रचारकों के लिए आदर्श है कि वे अपनी बुद्धि पर निर्भर न करें। हमें परमेश्वर का वचन सुनना है, अपनी बुद्धि की उपज नहीं सुनना है। हम यूहन्ना 8 अध्याय उसके 27 पद में पढ़ते हैं, वे न समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। वे सांसारिक थे, अतः स्वर्गिक बातों को समझना उनकी बुद्धि से परे की बात थी। हम यूहन्ना 8 अध्याय उसके 28 पद में पढ़ते हैं, तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। यीशु जब अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता है, तब वह दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 13 और 14 के संदर्भ को देता है, जहाँ उसके अविनाशी राज्य की भविष्यवाणी है। यहाँ वह अपने कृषिकरण और भावी ताजपोशी का उल्लेख कर रहा है। यीशु के पुनरुत्थान के बाद इन्हीं धर्म गुरुओं में से अनेक ने उसमें विश्वास भी किया। प्रेरितों के काम की पुस्तक में यरूशलेम के याजकों के विश्वास करने का उल्लेख है। यीशु उन्हें यही समझा रहा था कि यीशु की मृत्यु स्पष्ट करेगी कि वह कौन है और क्यों आया था। जब तक कोई उसके कामों को न समझेगा, वह नहीं जान पाएगा कि यीशु कौन है। हम यूहन्ना 8 उसके 29 और 30 पद में पढ़ते हैं, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी अपने दिन भर के कार्यों पर ध्यान दिया और सोचा कि आपको कोई कार्य वैसा नहीं करना था जैसा आपने किया है? हमारे प्रभु का कोई दिन ऐसा नहीं था कि वह अपने कमी पर पछताए, क्योंकि उसने वही किया जिससे परमेश्वर पिता प्रसन्न होता था। वह अति स्पष्ट दर्शाता है कि वह पिता की इच्छा पूरी करने पृथ्वी पर आया था। तब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 8 उसके 31 और 32 पद में, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। केवल विश्वास के द्वारा ही उद्धार है, परंतु यह विश्वास अकेला नहीं है। मसीह में विश्वास करने के बाद विश्वासी उसके वचन में बढ़ना चाहता है। विश्वास का प्रमाण है उद्धारकर्ता की संगति में बढ़ना। अपनी कलीसिया में मैं उस व्यक्ति का विशेष ध्यान देता हूँ जो कलीसिया के काम में सक्रिय है परंतु बाइबल अध्ययन में रुचि नहीं रखता है, तो ऐसा व्यक्ति कलीसिया के लिए घातक होता है। मेरे प्रियो, सत्य आपको स्वतंत्र करता है और यह सत्य है। मसीह यीशु संसार का उद्धार करता है, वह सत्य है। पहले हम उसको उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके पास आते हैं, तब हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं। हम अनुभव करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम पाप से मुक्त हो गए हैं, अब हमें नरक की चिंता नहीं करनी है। वह हमें बाध्य नहीं करता है कि हम मसीही जीवन जिएं। हमें केवल उसमें विश्वास करना है और अपना जीवन उसे दे देना है कि अब वह हम में जिए। उसके अधीन हो जाने से हम स्वतंत्र हो जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे प्रियो, यह उनका भ्रम था। वे पहले मिस्र के दासत्व में थे, फिर बेबीलोन के दासत्व में रहे और इस समय रोम के अधीन थे। हम यूहन्ना 8 उसके 34 से 38 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। मेरे प्रिय मित्रों, सांसारिक रूप से वे स्वतंत्र नहीं थे, और आत्मिक रूप से भी वे स्वतंत्र नहीं हैं। वे अपने आप को अब्राहम का वंशज कहते हैं, परंतु वे यीशु को घात करना चाहते थे। जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। परमेश्वर की संतान प्रतिदिन अपने पाप की क्षमा मांगती है, शैतान की संतान ऐसा नहीं करती। दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र रहता है। दास काम करके चला जाता है, परंतु पुत्र काम करने के बाद भी घर में ही रहता है। वे सदा मंदिर में नहीं रहेंगे, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान नहीं थे। सन 70 में रोम के राजा ने उन्हें दास बनाया और ले जाकर दासत्व में बेच दिया। पुत्र हमें सचमुच स्वतंत्र करता है, हमें पाप की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, अनेक विश्वासी अपने जीवन से हार कर निराश हो जाते हैं। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि हमारा जीवन ऐसा हो। वह चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसके लिए जिएं। हम यूहन्ना 8 उसके 39 से 44 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम के संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। यह तो इब्राहिम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम वे विचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। मेरे प्रियो, एक कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा। यदि वे वास्तव में अब्राहम की संतान थे तो वे किसी की हत्या का षड्यंत्र नहीं रचते, परंतु हत्या करना शैतान का काम है, अतः वे शैतान की संतान है। तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उससे कहा, हम वे विचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मेरे प्रियो, हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर हमारा पिता है? यूहन्ना अपनी पहली पत्री में हमें इसका उत्तर देता है, पहली पत्री के 5 अध्याय और उसके 1 पद में, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। यीशु परमेश्वर की ओर से था और परमेश्वर की संतान उसकी वाणी सुनती है, परंतु यहूदी धर्मगुरु उसके वचन स्वीकार नहीं करते थे। अतः यीशु ने कहा कि उनका पिता अलग था, अर्थात शैतान उनका पिता था। मेरे प्रियो, आज भी अनेक मनुष्य उसके वचन को स्वीकार नहीं करते हैं। वे भाईचारे की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, परंतु सत्य के लिए खड़े होने का अर्थ है बुराई की निंदा, जैसे प्रभु यीशु ने किया। इसके कारण विरोध उत्पन्न होगा। हम यूहन्ना 8 उसके 45 पद में पढ़ते हैं, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। यीशु उनसे सच कहता था तो वे उसका विरोध करते थे, परंतु झूठ को स्वीकार करते थे। हिटलर ने अपनी पुस्तक में लिखा कि यदि झूठ कैसा भी बड़ा हो, उसे बार बार कहने से लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। आज विज्ञापन और समाचार के माध्यम से इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। हम यूहन्ना 8 उसके 46 से 48 पद में आगे पढ़ते हैं, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है, और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है। मेरे प्रियो, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यीशु अपना जीवन दांव पर लगाकर पूछता है कि तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है। यह प्रश्न मसीह के ईश्वरत्व का प्रमाण है। उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। यह वाद विवाद का सिद्धांत है कि जब आपका तर्क हार जाए तो मजाक करो। सुनिए उन्होंने क्या कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है। यह निंदा की बात है। हम यूहन्ना 8 उसके 49 से 51 में पढ़ते हैं, यीशु ने उत्तर दिया कि मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, एक तो है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। उनके मन घृणा और हत्या से भरे हैं, और यीशु का मन प्रेम से भरा है। वह उनके लिए क्रूस पर अपनी जान देने जा रहा है। वे उसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच रहे हैं, परंतु वह उनको जीवन देने की योजना पूरी कर रहा है। वह उन्हें अनंत जीवन, आत्मिक जीवन दे रहा है। यदि कोई मनुष्य मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। मेरे प्रियो, यह यीशु मनुष्य से कहीं अधिक है। हम यूहन्ना 8 अध्याय उसके 52 से 59 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया है कि तुझ में दुष्ट आत्मा है, इब्राहिम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए हैं, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। हमारा पिता इब्राहिम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है, और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है, और तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैंने उसे जाना है, अर्थात मैं उसे जानता हूं, और यदि कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी नाई झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। मेरे प्रियो, क्या इब्राहिम ने मसीह को देखा था? निश्चय ही देखा था। पुराने नियम में परमेश्वर का दर्शन इन लोगों के लिए मसीह का दर्शन ही था। पहले अध्याय में यूहन्ना ने स्पष्ट कहा, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हम एक अध्याय उसके 18 पद में इसे पाते हैं, अब्राहम भी मरा नहीं था, उसकी देह कब्र में थी, परंतु वह परमेश्वर के साथ जीवित है। लुकार्ची सुसमाचार 20 अध्याय उसके 38 में यीशु ने कहा कि परमेश्वर मृतकों का परमेश्वर नहीं, जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि सब उसमें जीवित रहते हैं। कुछ का कहना है कि यीशु ने अपने आप को परमेश्वर कभी नहीं कहा। यह पद 58 उनकी बात का खंडन है, पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। ध्यान दीजिए, मैं हूँ का अर्थ है यहोवा। इसी कारण उन्होंने उसे मारने का प्लान किया और उसे मारने के लिए पत्थर भी उठाए। उनके विचार में वह परमेश्वर की निंदा कर रहा था। मेरे प्रियो, यहूदियों को यीशु के बारे में निर्णय लेना था कि वह सच्चा है या झूठा। आपको भी निर्णय लेना है कि यीशु सच्चा है या झूठा, वह परमेश्वर है, उद्धार करता है या नहीं, उसे स्वीकार करें या नहीं। आपका निर्णय उसे बदल नहीं देगा। वह मैं हूँ अर्थात यहोवा है, और रहेगा। वह अनादि अनंत परमेश्वर है। आपको केवल यह निर्णय लेना है कि उसे ग्रहण करें या त्याग दें। मेरे प्रियो, आज के इस वचन ने मुझे और आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, वह परमेश्वर है, वह मुझे और आपको बचाने के लिए आया है। सच बात तो यह है कि आज मुझे और आपको भी सही रूप में निर्णय लेना है, उन यहूदियों की तरह, कि हम उसे स्वीकार करें या उसे त्याग दें, हम उसे सच्चा कहें या झूठा ठहराएं। आप उद्धार पाना चाहते हैं या नहीं, आप अपने जीवन को बचाना चाहते हैं या नहीं, यह आपका निर्णय है जो आपको स्वर्ग और नरक दे सकता है। मेरे मित्रों, इसमें किसी का भी कोई काम आपके लिए लाभकारी नहीं होगा जब तक कि आप स्वयं इसका निर्णय न लें। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपने अवश्य ही परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी बहुतायत से सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मेरी